नंद नंदन मुकुंद मुरारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनभारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा निताई गौर हरि बोल जय प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तो इस सुंदर रमणीक वन में आपका सबका स्वागत है। इसका नाम है करह वन या करहला। इसके कारण यह है कि जो चंद्रावली नाम की सखी थी कृष्ण की, इसके पति का नाम क्या था? सुबह बताया था, गोवर्धन मल्ल। उसकी नानी का नाम कराला था, कराला, और उसका वो जन्म स्थान है ये, और चंपकलता देवी का भी जन्म स्थान है। चंपकलता यानी राधा कृष्णा ललिता और चंपकलता, विशाखा और इंदुलेखा, सबको समझ में आया ना वो फॉर्मूला? समझने में आसान, याद करने में आसान। सो चंद्रावली की नानी का नाम कराला था, इसलिए इस गांव का नाम भी कराला यानी करेला है, और ये चंपकलता देवी का गांव है। चंपकलता जी के पिताजी का नाम गुणभानु है और उनके माताजी का नाम श्री समिता देवी है, समिता दूसरे नाम भी है उनके। पिताजी का नाम श्री आरामदेव है, दूसरा एक नाम श्री आरामदेव, और माताजी का नाम श्री वाटिका देवी, दोनों नाम है उनके। विशेषता यह है कि राधा रानी का जन्मदिन जो है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी, उसी दिन इनका भी जन्म हुआ है। और कौन सी देवी का जन्म हुआ है इस दिन? विशाखा देवी का जन्म भी इसी में हुआ है, उसी दिन। देखो विशाखा देवी, राधा रानी और चंपकलता, तीनों का दिन एक, जन्मदिन एक ही है। और इनका रंग कौन सा है? अगर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, कॉमन सेंस को यूज करेंगे तो नाम चंपकलता है, चंपा के फूल जैसा रंग है उनका, सुंदर तेजस्वी गुलाब पीले रंग का। फिर इनका जो वस्त्र है ये राधा रानी के समान नीला वस्त्र पहनती है। राधा रानी नीला वस्त्र क्यों पहनती है? क्योंकि कृष्ण नीले हैं और हमेशा उनकी याद में उनको, उनको ही उनके ही रंग में उनको समा जाना है। कृष्ण पीताम्बर क्यों पहनते हैं? क्योंकि राधा रानी का रंग जो है गौर वर्ण है, स्वर्ण कांति, तो उसी स्वर्ण कांति के पीताम्बर को कृष्ण धारण करते हैं। इनका भी जो कुंज है, निज कुंज है, उसका नाम है विशद कुंज, और तप्त स्वर्ण के रमान उस कुंज का रंग है। इनका प्रिय वाद्य जो है ना वो स्वर मंडल है, मतलब आपने संतूर देखा है? संतूर कभी बजाते ना उसको, ऐसे ऐसे बजाते हैं उसको, तो स्वर वाद्य कहते हैं, स्वर तंतु वाद्य कहते हैं उसको। तो वो उसमें वो बहुत निपुण है, उसका प्रिय वाद्य है। और चंपकलता देवी की प्रधान सेवा है भोजन बनाना, इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि आपके रसोई में सब माता लोग ध्यान देना इसके ऊपर, और जो प्रभु गणों को भी घर में खाना बनाना पड़ता है वो भी ध्यान देना। अच्छा है, मतलब मैं भी बनाता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको शायद सुनकर आज आनंद होगा कि जब हम लोग मेडिकल कैंप लगाते थे ना, हमारे भैया भी आए हैं फिर बहुत बार, एक बार हम 9 घंटा गाड़ी में बैठे थे, बारिश में फंसे हुए थे, माता भी साथ में थी हमारी, तो हर कैंप में मैं भोजन बनाता था मिनिमम 200 लोगों का हर वीक के एंड में। एक हफ्ते में खिचड़ी और हलवा, और एक हफ्ते में मैं भूल गया बटाटा वड़ा, एक में बटाटा वड़ा ऐसा बड़ा बड़ा 500-700 बनाते थे हम लोग। तो भोजन बनाना एक बहुत आनंददायी चीज है, भोजन बनाना एक कला भी है और एक आनंद की बात भी है। पर ऐसा कहते हैं कि जिनको भोजन खाने में रुचि है वो बेस्ट कुक बन सकते हैं, जिनको टेस्ट है इस चीज में वही बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। जिनको भोजन में इतना रुचि नहीं, मतलब ठीक है चल जाता है कुछ भी, वो अच्छा कुक नहीं बन सकते। तो आप समझ गया ना मैं कुछ खाना बनाना क्यों जानता हूँ। क्योंकि जब मैं पहले पहले हरे कृष्णा में आया था ना, तो मैं हर प्रोग्राम में 2 थाली लेकर बैठता था। 2 थाली में कैसे ना कि कोई आइटम मिक्स नहीं होना चाहिए ना, एक तो ज्यादा लेना है और छोटी प्लेट होगी तो ज्यादा लेकिन सब लोग मिक्स हो जाएगा, फिर वो आनंद कैसे आएगा? इसलिए वो ज्यादा लेना है और 2 प्लेट में डिवाइड करके लेना है, तो सबसे कोने में बैठना है और आराम से पाना है उसको। ये हमारा इतिहास है, कहते भाई ज्यादा प्रेरणादायी इतिहास नहीं है। तो चंपकलता देवी की जो प्रधान सेवा है वो भोजन बनाना है। हाँ, तो मैं ये बताने जा रहा था कि रसोई में अगर आपको सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाना है तो आपको ये भाव से बनाना है कि मेरी रसोई की अधिष्ठात्री यानी क्या कहते हैं इसको, नियंत्रक या चीफ इंचार्ज यशोदा देवी, राधा रानी और चंपकलता है। सबसे बेस्ट जो कुकिंग का अधिकार है वो यशोदा देवी के पास में है, क्योंकि वो माता है कृष्ण की, और दूसरी आपको दूसरी नहीं कह सकती, वो दोनों एक ही स्तर पर है। राधा रानी भी दुर्वासा मुनि से वरदान मांगकर इतनी पुनीत हो गई है कि यशोदा देवी भी उसको विनती करती कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यशोदा देवी, राधा रानी और चंपकलता देवी, इनको स्मरण करके ही हमेशा भोजन बनाना चाहिए। और किसके लिए भोजन बनाना चाहिए? श्री राधा और कृष्ण के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। हाँ, अपने लिए नहीं बनाना है, उनको पुकार के। तो इनकी तीन प्रधान सहायक मंजरी, सहायका मंजरी है, एक पालिका मंजरी, विलास मंजरी और केली मंजरी। और एक एक के कितने कितने असिस्टेंट्स है मैंने बताया सुबह, शायद नहीं बताया, हाँ रह गया बात सुबह बताने। ये जितनी प्रधान सखियां है ना, ललिता, विशाखा, चंपकलता, जो भी कुछ है, इनके हर एक की तीन तीन प्रधान मंजरियां हैं असिस्टेंट में। और ये एक एक मंजरी के नीचे 1 करोड़ गोपियां हैं, 1 करोड़। तो इस तरह से उसको जूथ कहते हैं, जूथ या यूथ कहते हैं। ऐसे 3 यूथ यानी 3 करोड़ गोपियां ये हर एक अष्टसखी के पास में होती। तो पालिका मंजरी के पास 1 करोड़, केली मंजरी के पास 1 करोड़ और विलास मंजरी के पास 1 करोड़, ऐसे स्थिति है। और चंपकलता के पिताजी भी विविध कलाओं से निपुण हैं, तो इसलिए ये भी विविध कलाओं में निपुण है। देखो कैसे है, सभी गोपियां सभी कलाओं में निपुण हैं, लेकिन एक एक की कुछ विशेषता है। जैसे फूलों के बारे में ललिता की विशेषता है, चित्रा सखी जो है वो पक्षियों की भाषा समझती है। क्या बताएं आपको, राधा रानी और कृष्ण के जिला का जो आयोजन होता है ना, आयोजन, उसमें ललिता चित्रा सखी जो है ना वो पक्षियों को ट्रेन करती हैं उनकी भाषा में और उनको सेवा में इंक्लूड कर लेती है। ऐसा कोई कर सकता है? हम लोग मनुष्य को ड्राइव करते करते थक जाते हैं, अरे ऐसा मत बोलना बाबा, ऐसा एक्शन के साथ में ऐसा मत बोलना, चेहरे को ऐसा रखना बहुत तरह बोलना पड़ता है। ये पंछियों को उनकी भाषा में बातें करती है और उनको ट्रेनिंग देती है और कृष्ण लीला में सहभाग लेती है उनका। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहिए, कि भौतिक जग जो है ना वो एकदम सीमित है, एकदम एवरीथिंग इज सो लिमिटेड हियर, उसके बियॉन्ड हम सोच सकते नहीं यहाँ पर। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गाय भी बोलती है, पक्षी भी बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, मनुष्य भाषा में बोलते हैं। नहीं तो गायों ने कैसे बताया होता गोपालों को कि हमें कृष्ण के साथ जाना है? कुछ कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगा कि नहीं? वो सब था उस समय, और अभी भी हो सकता है। अगर हम पूरी तरह से स्पिरिचुअल बन जाए ना 100%, तो हम भी उस दिव्य भाषा को समझ सकते, क्योंकि दिव्य भाषा कैसी होती है? वो हृदय से होती है ना। इसका उदाहरण हमने देखा है हमारे आंखों से। हमारे गुरुदेव जो 1971 में वृंदावन में आए थे ना, तभी वो दो ही जन, तीन जन थे, तीन ही जन पूरे वृंदावन में विदेशी थे। इसलिए हर एक आदमी वृंदावन का उनको जानता था कि ये तीन विदेशी वृंदावन में घूम रहे हैं। तो समय हमारे महाराज जी को हिंदी तो आती नहीं थी, और राधेश लाल जी महाराज जो राधा वल्लभ मंदिर के गोसाई हैं, उनको इंग्लिश तो नहीं आती है। लेकिन उन्होंने हमको बताया है, दोनों ने, इन्होंने इंग्लिश में और इन्होंने हिंदी में, दोनों सेम बात करते थे, और दोनों को मैं ये हिंदी की बात सेम बात उनको इंग्लिश में बताता, और वो इस बात जो इंग्लिश में कह रहे हैं उनको हिंदी बताता था, क्योंकि दोनों को होती उत्सुकता वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए हमको वो अनुवाद करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो अभी आए अनुवाद करने के लिए बीच में, लेकिन जो बिना अनुवाद के हम रात रात भर बातें करते थे, वो आनंद अभी तुम्हारे आने से खत्म हो गया। अभी सोचो आप, शाम को बैठते थे मानसरोवर किनारे और सुबह तक बात करते थे, और ये हिंदी में बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे, और फिर भी बातें कर रहे हैं। कि दिल की जो भाषा है ना, प्रेम की, सब कुछ समझ में आता है। वो मान मंदिर में 6 महीना रहे, उधर भी किसी को इंग्लिश नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती, इतना बड़ा परिवार है वहां पर, अभी भी 10 लोग है परिवार में, वो सब लोग उनसे बातें करते थे, और ये भी उनसे बातें करते थे। केवल रमेश बाबा को अच्छी अंग्रेजी आती थी, लेकिन वो भी ज्यादातर अंग्रेजी बात नहीं करते थे। अभी भी वो है ना, उनको अंग्रेजी आती है, लेकिन वो कैसा है ना, वो हिंदी बोलने वाले को अंग्रेजी में सोचना पड़ता है अंग्रेजी बोलने के लिए पहले तो वो दिमाग में बहुत कष्ट होता है, इसलिए वो बोले हिंदी बोलते रहते, तो मुझे अनुवाद करने का सेवा मिल जाता है, इससे अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब हृदय प्रेम से भरा होता है ना, तो सब भाषाएं समझ में आती हैं। अभी जब भी प्रियतम और प्रिय, जैसे कोई प्रियकर प्रियसी है ना, कई बार तो बातें भी नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो क्या होता है उस समय, कई घंटों तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो तो प्रेम सरोवर का कथा तो है, लेकिन आज भी वो ट्रुथ है। जब प्रेम होता है ना, प्रेम हृदय जब प्रेम होता है, तो आंखों में सारे संदेश प्रेम का वाहन जो है सब हो जाता है। तो ये बातें कहां से निकली थी, चित्रा सती के निपुणता के ऊपर, है ना। तो चंपकलता देवी द्यूत शास्त्र जो है ना, चौसर, जिसमें हमारे शकुनी मामा बहुत एक्सपर्ट है, उसमें ये एक्सपर्ट है, और इनकी सहायता से राधा कुंड के किनारे, श्याम कुंड के किनारे एक घाट है, इसका नाम है पाशा खेला घाट, ये बंगला नाम है एक्चुअली। पाशा यानी का फांसे चौसर के, और खेला यानी खेलने का, और घाट। तो राधा रानी को कहते हैं कि कृष्ण भगवान बहुत परेशान करते हैं, हर एक गेम में उनको कभी कभी इधर चीटिंग वीटिंग करते हैं, और सारे चीटिंग वीटिंग का जो बदला है वो पाशा खेला में वो ले लेती है। इनकी सहायता से वो कृष्ण को हमेशा पाशा खेला में हरा देती है, चौसर में, द्यूत क्रीड़ा में। और एक द्यूत क्रीड़ा का और एक वही द्यूत, मतलब वही चौसर, चेस, द्यूत, द्यूत, DYUT। और ये इतनी तेज है कि किसी भी पक्ष के इनके सामने कुछ चलती नहीं है। गान विद्या में भी ये सबसे सुंदर और सबसे निपुण कलावती है। एक और उनकी कला है उनके पास, वो ना मिट्टी के बर्तन ना बनाने में बहुत निपुण है। हम लोग ने मिट्टी के बर्तन क्या देखा है बताओ, गोल मटोल और क्या है उसके अंदर, लेकिन गांव-गांव में आप देखेंगे कितना डिजाइन बनाते हैं उसके अंदर, कितने ऐसे ऊपर नीचे, और हम लोग तो हाथ से डिजाइन निकालते, लेकिन मिट्टी के बर्तन में बहुत ही अति सुंदर शेप के, आकार के, प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये मिट्टी के बर्तन जो पुराने जमाने में यूज एंड थ्रो ऐसा था, आज हम लोग मिट्टी के बर्तन घर में यूज करते हैं, लेकिन उसी को बार बार यूज करते हैं, वो टूटने तक, वो अपना छेद हो गया तब तक हम करते हैं। लेकिन पुराने गांव में ये रिवाज था, महाभारत में ये रिवाज था, क्या बताएं आपको, अभी सब कल्पना ही रह गई है। महाभारत के समय पर सोने की थाली भी डिस्पोजेबल थी, खाना खाने का और डिस्पोज, इमेजिन, और कितनी पंगत लगी तो भी सब डिस्पोज, कितना वैभव था, कितना वैभव था। अभी मुझे थोड़ी सी कहानी याद आ रही है, मैं बोलते जाता हूँ, क्योंकि अच्छा मौसम है, बैठे सब लोग आराम से सुनते रहो। जब भी रावण को सब समझा रहे थे कि राम की पत्नी को लौटा देना, मत छेड़ना, वो तुम्हारे विध्वंस का कारण है, लेकिन वो जिसके दिमाग में काम वासना इतनी बसी है उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, कुछ भी। पत्नी ने भी समझाया, मंदोदरी ने, छोड़ो उसको, आप मुझ में कमी हो तो माफ जा चाहती हूँ, लेकिन उसके चक्र में मत पड़ना। महाराज ने भी कहा था, अरे महाराज तात, वो आग का गोला है, आग का गोला, उसके चक्र में मत पड़ना, अपने अंतपुर में ही समाधान लेना आप, मतलब अपने अंदर जो पत्नियां हैं आपकी, हजारों पत्नियां, बी हैप्पी विद देम। फिर एक व्यक्ति ना उनको एक सोने का पहाड़ दिखाने को लेके गया रावण को, तो सोने का पहाड़ देखकर रावण बहुत खुश हो गया। उसने कहा, महाराज ये सोने का पहाड़ नहीं है, ये हिरण्यकशिपु का एक कुंडल है, हिरण्यकशिपु ने पहना हुआ एक कुंडल है, और उस कुंडल, इतना महान कुंडल पहनने वाले हिरण्यकशिपु को इन्होंने ही मारा था पिछले जन्म में, अभी भी समझ लो आप, आया समझ में आपको, मतलब ये इस तरह से, उस तरह से, ये न प्रकार प्रकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मत पड़ो इस चक्र में आप। फिर भी काम वासना जो होता है ना, वो आदमी को पुराना बुद्धि से खोखला बना देता है। तो ये बर्तन पर बात निकली थी, है ना। तो बर्तन मिट्टी के पुष्प भी बनाती है, और मिट्टी के पत्र यानी लीव्स, ऐसे प्रकार की कला में बहुत निपुण है ये चंपकलता देवी, क्योंकि भोजन से संबंधित है ना, भोजन के साथ बर्तन भी, प्लेट भी खाने के संबंधित है। फिर वो ये सब भजन बनाने के बाद में बनाती भी है, और प्रिया प्रीतम को प्रेम से उसको हम लोग कहते हैं खिलाना, लेकिन संस्कृत अच्छी भाषा में कहते हैं आरोगाना, तो आरोगने में बहुत कुशल है, बहुत ही कुशल है। यानी इसकी स्पेशलिटी है, जब बनाती है और खिलाने में जो उनका जो कला है उसमें, हर एक व्यक्ति भोजन करके खिलाता है लेकिन उसमें भी एक कला होती है, प्रेम से, ढंग से, अच्छी तरह से। और उसके बाद में चवर ढुलाना होता है ना, चामर कहते हैं उसको, उसका नाम अच्छी चवर है, चवर, तो चवर ढुलाने की सेवा में भी बहुत कुशल है। उसके बाद में मिष्ठान्न जो होता है ना, मिठाई, उसमें वो अपने भोजन बनाने में एक्सपर्ट है लेकिन मिष्ठान्न में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। जैसे ब्रिजवासी है ना, देखो हम लोग अभी रोज आप लोग मिठाई खा रहे ना, मैं तो नहीं खा रहा हूँ, देखता हूँ दूर से खा, क्या पूछता हूँ क्या बनाया है, लेकिन आपने देखा ना पहले दिन गुलाब जामुन, दूसरे दिन क्या था मोहन थार, तीसरे दिन क्या था रसगुल्ला, उधर उधर भोजन थाली में क्या खाया था रसगुल्ला, आज क्या था खीर। ब्रिजवासियों के हाथ का मिठाई खाना ये परम भाग्य की बात है, वो स्वाद ना इधर भी नहीं आएगा आपका। तो ये मिष्ठान बनाने में बहुत कुशल है। और चंपकलता जी श्री प्रिया जी यानी राधा रानी के सखियों में एक विशेष प्रिय स्थान रखती है। बोलो चंपकलता देवी की, जिनको जिनको सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद बनाने की इच्छा है चंपकलता देवी को प्रणाम करो और वंदन करो और प्रार्थना करो कि आपकी कृपा से हम स्वादिष्ट भोजन बना सकें। अभी इनकी तीन प्रधान अष्ट सखियों के तीन प्रधान मंजरियां होती है और हर एक की एक एक अष्ट सखियों का ग्रुप होता है। हर एक अष्ट सखी का अष्ट सखी खुद का एक ग्रुप होता है। तो इनकी सखियों का नाम ऐसा है, मृगलोचनी, मणिकुंडला, शुभचरिता, चंद्रा, चंद्रलतिका, मंडली, कंदुक नयनी, सुमंदिरा। वो क्या बहुत बार ना वो हमारे पास आते हैं लोग, बाबू जी अपने बच्चे को नाम दीजिए, बच्चे को नाम रखिए हमारे, तो हमें भी बहुत सोचना पड़ता है क्या नाम रखें, क्योंकि कई नाम कॉमन होते हैं ना सब जगह पर। तो ये सब जो सखियों के नाम है ना बहुत सुंदर सुंदर नाम है, हरे कृष्णा। एनीवेज, तो चंपकलता देवी का ये करहपुर करहला जो स्थान है इसको हम भविष्य उत्तर पुराण में इसका मंत्र दिया गया है, वो हम सब लोग उसको उच्चारण करेंगे। हाँ, यहाँ पर बैठे उस स्थान को, त्रैलोक्य मोहनायैव नमस्ते करहाभिद गंधर्व सुखवासाय विश्वावसुवरप्रद। हे गंधर्वों को सुखवास देने वाले, हे विश्ववासु के वरदान देने वाले, हे त्रैलोक को मोहित करने वाले करह नामक स्थान, आपको नमस्कार है, हरे कृष्णा। यहाँ पर मेरे पीछे आप जाएंगे ना तो एक गेट है बाहर निकलने का, वो गेट बाहर निकलते ही एक विशाल कुंड आएगा, उसका नाम है कंकण कुंड और एक नाम भी है ललिता कुंड, दोनों नाम है इसके। कहते हैं ब्रज में रास का आरंभ यहां से हुआ था और रास जो है ना एक महान कार्य है, भगवान अपना प्रेम जो अपने भक्तों के प्रति या किसी भी जीव के प्रति व्यक्त करते हैं उस प्रेम का सर्वोच्च जो प्राकट्य है वो रासलीला है। रासलीला कोई काम वासना का खेल नहीं है, रासलीला एक शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम का आदान प्रदान है, सुन रहे हैं आप, और वो सर्वोच्च है जो अपने भक्त के प्रति कृष्ण व्यक्त कर सकते हैं, वो रासलीला का प्रेम है। तो रासलीला के कार्य के पहले भी जब शुरू होने जा रहा था तो उसका कंकण यहाँ बांधा गया था। कहते हैं आप शादी में जानते ना, वो हड़कुंड रहता है उसके अंदर एक, फिर वो मंत्र बोल के उसको बांधते हैं, फिर पति को भी बांधते हैं, पत्नी को भी बांधते हैं, अलग अलग से वो एक संकल्प के रूप में बांधते हैं उसको। तो कंकण जो है रास का वो यहाँ पर बांधा गया था, इसलिए उसका नाम कंकण कुंड भी है। और दूसरा कारण यह है कि ललिता देवी का विवाह कृष्ण से होने वाला था, आपने मैंने सुबह बताया ना आपको, मैंने किसने कराया था, वो राधा रानी ने स्वयं ललिता जी का विवाह कृष्ण से कराया था, उसका भी जो क्या कहते संकल्प जो है वो यहाँ किया गया था। भद्र नाम की गोपी थी, भद्र गोपी, उसको भद्री भी कहते हैं, भद्र गोपी ने उनके दोनों की गांठ बांधी थी यहाँ पर इस कुंड के पास में, इसलिए उसका नाम ललिता कुंड भी है। और यहाँ पर ना बहुत विशिष्ट लीला है, आपने सुबह सुना ना नारायण भट्ट जी गोस्वामी के बारे में। तो नारायण भट्ट गोस्वामी महाराज ने, नारद मुनि के अवतार थे वो, उन्होंने जो ब्रज की खोई हुई संस्कृति है ना उसको जागरूक किया, और ब्रज का जो इतिहास है, जो दिव्य इतिहास है, उसको जागरूक रखने के लिए वो नाटिकाएं प्रस्तुत करना, उसमें फिर गीत गायन भी होता है, नृत्य सब कुछ होता है, लेकिन नाटिकाएं लीलाओं को प्रस्तुत करने के लिए जो कल्चर है वो उन्होंने आरंभ किया, तो वो भी उन्होंने यहीं पर आरंभ किया था। और वहां पर इस समय एक आचार्य थे, उनका नाम था उद्धव देवाचार्य, उनका एक नाम है घमंडी देवाचार्य भी, तो उसका विवरण देते हैं ऐसे इस प्रकार से कि वो घमंडी थे लेकिन वो कृपा पर घमंडी थे, उनके घमंड जो है भौतिक घमंड नहीं था, जैसे हमारा धन के विषय में होता है या सुंदरता के विषय में होता है, वो बड़ी श्रेष्ठ कृपा प्राप्त थी और उस कृपा पर उनका घमंड था, लेकिन वो ऐसे मटेरियल नहीं था जिससे हम सोचते हैं। तो उद्धव देवाचार्य ने भी नारायण भट्ट गोस्वामी के इस कार्यक्रम में सहयोग दिया था, और उन्हीं के निर्देश में यहाँ पर रासलीला का आयोजन किया था। अभी रासलीला में भगवान तो है नहीं, तो सब पात्र बनते हैं ना, कोई कृष्ण बनता है, एक राधा रानी बनती है, कोई उनका श्रृंगार होता है। आपने कभी भाग्य होगा आपका तो आपको दिखने को मिलेगा, हम लोग जो डेकोरेशन करते हैं ना मुंबई में ड्रामा में, तो टोटल डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट। और यहाँ पर जो राधा कृष्ण को श्रृंगार करते हैं ना वो टोटल डिफरेंट होता है, बहुत ही सुंदर होता है। मतलब उस दिन हम लोग वहाँ पर गेवरकुंड में बैठे थे ना, थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा उधर, हाँ उधर साकरी कोर में भी लोग रोज सजाते हैं ऐसे, और वृंदावन की परिक्रमा में भी रोज लोग कोई जगह पर बच्चों को राधा कृष्ण बनाकर झूले में झुलाते रहते हैं, हाँ बात भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उन्होंने एक रास का आयोजन किया, उसमें पात्रों को मतलब इनका बेटा मेरी बेटी ऐसे सबको ले लिया, और कहते हैं कि जब वो रास का आयोजन हो रहा था तो आकाश से एक दिव्य मुकुट उतरा कृष्ण को पहनाने के लिए। वो मुकुट यहाँ पर किसी मंदिर में विराजमान है, और साल में एक बार इसका दर्शन होता है एक दिन, और दूसरा एक मुकुट है वो हवेली में उपस्थित है, लेकिन जो ओरिजिनल आकाश से आया था है ना महाराज जी, सही बात है ना, वो आगे गांव के थोड़े बाहर एक मंदिर में है, और वो मुकुट जो है ना तो लीला में पहनाया गया उनको, लेकिन वो मुकुट जब भी उतारा गया तो वो उस शिला के अंदर वो पिघल गया, मतलब शिला एक रूप हो गई उसके साथ, उसको कहते हैं मुकुट शिला। जैसे बलराम जी रासलीला को देख रहे थे ना, गोवर्धन में हो रही थी, तो वो झुक गए क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर देखते हुए कृष्ण देखेंगे तो रासलीला बंद कर देंगे, बड़े भाई के सामने कैसे कर सकते हैं, तो मेरे भैया को संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए वो झुककर देखने लगे दंडवत के रूप में, और दंडवत के रूप में वो मुकुट ऐसा बीच में आ रहा था, तो उन्होंने मुकुट को उतार दिया, इतने भाव में थे बलराम जी महाराज, तो उन्होंने मुकुट को उतार शिला में रख दिया, तो मुकुट शिला में एक रूप हो गया। तो उधर बलराम जी की भी मुकुट शिला है, हम लोग परिक्रमा में दिखाएंगे आपको, बलराम जी के मुकुट शिला नहीं देख सकते क्योंकि वो गोवर्धन के ऊपर है वो, लेकिन उसका स्थान है वहां पर, तो वैसे ये मुकुट जो है शिला रूप बन गया। अभी आगे सुनिए इस कथा में, इस लीला में क्या हुआ। अभी ये नाटिका आरंभ हो गई, रासलीला शुरू हो गई, तो रासलीला में ना वो दोनों जो थे राधा कृष्ण, उनको आवेश हो गया राधा और कृष्ण का, और रासलीला का ड्रामा समाप्त होने पर दोनों लुप्त हो गए, दोनों गायब हो गए। अभी आप आएंगे ना अपनी बेटी को लेने के लिए और बेटा को लेने के लिए, तो आए वो लोग वहां पर। ध्रुव दास जी ने इनका पूरा बड़ा लंबा वर्णन किया है ब्रज भाषा के अंदर, तो उसमें वो बताते हैं कि वो जो माता पिता थे उन बालकों के, वो बहुत आके झगड़ा किए यहाँ पर महाराज जी के साथ, उद्धव देवाचार्य के साथ बहुत वाद विवाद हुआ बहुत, लेकिन वो तो रो रहे थे बेचारे, उनको भी दुख हो रहा था कि मैंने तो कुछ किया नहीं लेकिन बालक तो अपने आप ही गायब हो गए। तो उन्हें बहुत रो रो के गिड़गिड़ाए वो, तब जाकर कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए, उन्होंने बालकों को सुपुर्द कर दिया। तो यहाँ का जो लीला है ना वो थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है, इसलिए हम कभी कभी हमारे ऑफिस के लोगों को बताते हैं, क्या तुम दिमाग को क्या तो गाड़ी में पार्क करके आते हो क्या, तो काम नहीं करने के दिमाग नहीं लगाते हो, तो गाड़ी के साथ हेलमेट के साथ दिमाग भी पार्क करके आते हो क्या, ऐसे हम लोग बोलते हैं लोगों को, जब दिमाग नहीं लगाते ना वो दिल लगा के काम नहीं करते, ऐसा कभी कभी हम बोलते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर तो हम सबको आपको बताएंगे कि अपना दिमाग है ना वो कमरे में पार्किंग करके आना, केवल हृदय लेके आना बस, और सुनना, क्योंकि यहाँ की लीला जो है केवल आस्वादन करने के लिए, तर्क करने के लिए नहीं है, विचार करने के लिए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सब इतिहास है, ये कोई कपोल कल्पित कविता नहीं है, ये सब घटनाएं सत्य घटनाएं हैं। और विशेष रूप से अभी ये कथा मैं आपको बम्बई बता सकता हूँ टाइम में आकर, है ना, लेकिन यहाँ पर बैठकर आपको जो उसका आनंद आएगा और उसका जो लाभ होगा दिव्य लाभ, वो आपको वहां पर नहीं होगा। यहाँ पर ही जो भूमि है, ये जो रज है, ये स्थान है जहाँ पर ये लीला हुई थी, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं ये सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणय भक्ति संगी। वो अभिलाषा करते हैं कि आपके जो लीला स्थली है, मैं आपके प्रणयी भक्तों के साथ जाकर वहां बैठकर उन लीलाओं को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वहां बैठकर सुनने से ना वो दर्शन भी होता है मन के पटल में उन लीलाओं का। तो वो ये स्थान है यहाँ पर घमंड देवाचार्य का, जो उद्धव देव आचार्य है। और एक यहाँ पर बहुत सुंदर लीला है ये बज्रनाभ, जो भगवान के प्रपोत्र थे, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र बज्रनाभ, तो उन्होंने ब्रज को संवारा था भगवान के अंतर्धान होने के बाद। कितना सुंदर कार्य किया उन्होंने, ब्रज को, ब्रज भूमि को संवारना ये सबसे महान कार्य है, क्योंकि धाम बहुत दयालु होता है, धाम को संवारना यानी बड़ी कृपा प्राप्त होती है। अभी मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करके जीर्ण धाम को उद्धार किया है, क्योंकि प्रधान रमेश बाबा जी महाराज हैं, उन्होंने कई स्थानों को परमानेंट कर दिया एक तरह, एक प्रकार का उस काल का प्रभाव तो होगा उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कम से कम हजारों साल तक लोग उसको देखते रहेंगे। मुझे ना हमेशा दुख होता है क्योंकि 86 साल में जो मैंने देखा था ना, उसमें से भी कई स्थान अभी लुप्त हो चुके हैं। जैसे मदन मोहन जी के नीचे एक प्रस्कंदन सरोवर था, मदन मोहन जी का जो टील है ना, द्वादश आदित्य टील, वहां पर कालिया का मर्दन करने के बाद बहुत दिन ठंडक, बहुत समय तक ठंडक जल में रहने के पश्चात, बहुत समय युद्ध किया ना जल के अंदर रह के, तो भगवान जब बाहर आए तो बहुत उनको ठंड लग रही थी, तो एक टील पर चढ़ गए और टील पर बैठ गए, और वहां पर एक नहीं 12 सूर्य आए सेवा करने के लिए, उनको गर्मी देने के लिए। तो वो फिर उष्ण हो गए, फिर और भी उष्णता दी गई, तो पसीना आया भगवान को, स्वेद बिंदु, दिव्य स्वेद निर्माण हुआ, और वो सब ऐसे शरीर से बहा और वो टील से उतर कर इसका एक सरोवर तैयार हो गया, प्रस्कंदन सरोवर। जब मैं 86 में आया था तो वो सरोवर मैंने देखा है उस टील के नीचे, आज भी नहीं वहां पर, आज समाप्त है वो। तो ऐसे मुझे हमेशा दुख होता है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब स्थान दिख रहे हैं आपको, जो भी है रास मंडल यहाँ पर है, तो झूला यहाँ पर लगा हुआ है, झूला का स्थली है ये, यहाँ झूला लगाया जाता है। कभी ऐसा मौका ना आ जाए कि अरे यहाँ पर वो हुआ करता था, यहाँ पर ये था जो हमने देखा था, अभी नहीं है, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए बज्रनाभ ने बहुत महत्वपूर्ण सेवा की है। मैंने आपको कई बार बताया कि धाम का उद्धार 3 तरह से होता है, बताइए। हाँ सर, सर यानी जलाशय, सर कुंड सरोवर कुंड विकास, और वन और विग्रह। वो तो आप सब लोग पंडित बनने जा रहे हैं धीरे धीरे अभी, तो ये किसी को पता नहीं मुंबई में, आपको ही पता है, ध्यान रखना। तो ये तीनों का, तीनों स्तर पर उन्होंने धाम का उद्धार किया है, विग्रहों को स्थापन किया है और सरों को स्थापन किया है। जैसे कि वो विमल कुंड तो बना था लेकिन बज्रनाभ ने उसका फर्स्ट क्लास बॉर्डर बना के उद्धार किया हुआ है, और वनों का भी सवारा है। अभी आज लोग, आजकल लोग वनों को कम सवारते हैं, कुंडों को सवारते हैं, और विग्रह हैं उनको अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन वनों को सवारना आसान काम नहीं है। ये सब काम बज्रनाभ ने किया था, और बज्रनाभ ने फिर पूरा जीवन भर, वो कैसा था ना कि भगवान जब जाने का समय हुआ तो उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया था कि चक्रवर्ती सम्राट तो परीक्षित बनेंगे उस समय तक। राजा परीक्षित को तो बचपन में ही बिठाया था ना, ब्राह्मणों ने राज चलाया लेकिन गद्दी पर तो परीक्षित महाराज थे, तो जब बड़े हो गए तो राजा बने, सारे 5 पांडवों के सारे गुण उनके अंदर थे, ऐसे भागवत में वर्णन दिया है। तो उन्होंने बताया था कि जो मेरा ब्रजमंडल है जहाँ पर मैंने लीला किया था उसका राजा जो है ना आप बज्रनाभ को बनाओ, और बज्रनाभ को पर्सनली भी इंस्ट्रक्शन दिया था। तो बज्रनाभ ने जैसे अभी मथुरा मंडल के एक होता सांसद होता ना MP, वैसे मथुरा मंडल के वो बज्रनाभ अधिकारी थे, और पूरा ब्रज को उन्होंने संवारा था उस समय तुरंत भगवान जाने के पश्चात। और ये दिव्य कार्य पूरा, बहुत सारे विग्रह बनाए, बलदाऊ जी का जो दाऊ जी में है, लाडली लाल जी का विग्रह है, बलराम जी और रेवती का विग्रह जो ललिता गांव में है, और सब जितने भी बड़े बड़े प्राचीन विग्रह हैं सब उन्होंने बनाए थे, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ जी, जगह जगह जब कथा करता हूँ तो याद आती मुझे, लेकिन बहुत सारे विग्रह बनाए उन्होंने और उन स्थानों को परमानेंट कर दिया। फिर उनका जीवन जब समाप्त हुआ, जब वो अपने धाम में चले गए, तो इस गांव में उनकी समाधि है बद्रीनाथ की, ऐसा है। तो सब लोग बद्रीनाथ जी को प्रणाम कीजिए। अभिराम प्रभु कहाँ है? समाधि यहाँ से पास में, बद्रीनाथ जी की समाधि चलने के अंतर पर बहुत पास में ही है, जाके दर्शन करेंगे उसके बाद में। और तो बद्रीनाथ की प्रार्थना करना जरूरी है, और ललिता का जो कुंड है उसका भी मंत्र हम उच्चारण करेंगे। ललिता स्तपनो स्नपनो अद्भुत तीर्थराज नमोस्तुते, ललिता सरसे तुभ्यम सौभाग्य वरदायिने। हे ललिता जी के दर्शन से उत्पन्न तीर्थराज, हे सौभाग्य वरदाता ललिता सरोवर, आपको नमस्कार। फिर रास मंडल पे जो हम बैठे हैं उसका भी प्रणाम मंत्र है। ललिताम ललिता महदुत्साह गोपिका नृत्य रूपिणी कृष्ण क्रीडाभिरम्याय मंडलाय नमोस्तुते। हे ललिता जी के महान उत्सव स्वरूप, हे गोपिकाओं के नृत्य स्वरूप स्थान, श्री कृष्ण की क्रीड़ा के रम्य मंडल को हम नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। ये जो झूला है ना, इसका भी मंत्र है। हमारा शास्त्र इतना श्रेष्ठ है ना, झूला का मंडल ऐसा है, श्री राधा कृष्ण महोत्साह ललितोत्सव हेतवे ब्रह्मणा निर्मितायैव किंडोलाय नमोस्तुते। हे राधा कृष्ण के महान सुखरूप हिंडोला, हे श्री ललिता जी के उत्सव के लिए ब्रह्मा के द्वारा निर्मित हिंडोला स्थान, हे हिंडोला स्थान जो है हिंडोला, वो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाए हैं, आपको नमस्कार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।